जब यीशु का स्वर्गारोहण हुआ तो दो स्वर्गदूतों ने शिष्यों से कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खरे आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। ईसाई लोग उस महान दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ईसा मसीह दोबारा आएंगे। उस दिन प्रत्येक विश्वासी भाग लेगा। जो लोग मर चुके हैं वो उनके साथ आएंगे और हम जो अब तक जीवित हैं बादलों में परमेश्वर से मिलेंगे। 17:35 वापसी। अपनी बाइबल में यूहन्ना 14 खोले। यीशु ने अपनी वापसी के बारे में बार बार बात की थी, परंतु मरने से पहले की रात से अधिक स्पष्ट रूप से कभी नहीं करी। यह एक रात्रि भोज था जिसमें सब कुछ गलत होता दिख रहा था। जैसे ही हम अंतिम भोज की कहानी को देखते हैं, हमें आज हमारे संघर्षों के लिए यीशु की वापसी के महत्व का पता चलता है। शाम की शुरुआत में यीशु ने यह कहकर अपने दोस्तों को आश्चर्यचकित कर दिया कि मेज पर बैठा कोई उन्हें धोखा देगा। वे एक के बाद एक कहने लगे, हे गुरु, क्या वह मैं हूं? किसी ने नहीं कहा, हे प्रभु, क्या यह यहूदा है? जाहिर है वह भरोसामंद और सम्मानीय था। आखिरकार उन्होंने यहूदा को पैसे का प्रभारी बनाया था, और आप किसी आदमी को अपना पैसा तब तक नहीं देते जब तक आप उस पर भरोसा नहीं करते। यूहन्ना, जो यीशु के बगल में बैठा था, उसने पूछा कि वे किसके बारे में बात कर रहे हैं, और यीशु ने कहा, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। तब उन्होंने यहूदा को रोटी दी। यहूदा के पास पहले से ही यीशु को धोखा देने की योजना थी, परंतु अब वह मन में अंतिम निर्णय ले चुका था। यूहन्ना हमें बताते हैं कि टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। घटनाओं के क्रम पर ध्यान दे, शैतान ने उस दिमाग में प्रवेश किया जो उसके कार्य के लिए पूरी तरह से खुला था। फिर यहूदा बाहर चला गया और यूहन्ना कहता है, यह रात थी। अभी और भी बुरी खबरें आनी बाकी थी। यीशु ने कहा, हे बालको, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं। शिष्यों ने मसीह का अनुसरण करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। उन्होंने उन पर अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था, और अब केवल 3 वर्षों के बाद ही वे उनसे कह रहे थे कि वे केवल कुछ समय और उनके साथ रहेंगे। यह बताया जाना कि जो व्यक्ति दुनिया में आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, वो केवल कुछ समय के लिए ही आपके साथ रहेगा, ये सबसे कठिन अनुभवों में से एक है जिसे एक इंसान सहन कर सकता है, और अंतिम भोज में शिष्य को इसी का सामना करना पड़ा। पतरस यीशु से अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और उसने घोषणा करी कि वह उनके लिए अपना जीवन देने के लिए भी तैयार है। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मुर्गा बांध ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। ऐसा कोई दिन नहीं था जब शिष्य को इतनी बुरी खबरों से जूझना पड़ा हो। एक शाम में उन्हें पता चला कि एक विश्वसनीय नेता उद्धारकर्ता को धोखा देगा। यीशु स्वयं उनसे छीन लिए जाएंगे और उनका प्रमुख शिष्य उनके विश्वास से इनकार कर देगा। यीशु ने आगे जो कहा वो बिल्कुल आश्चर्यजनक लग रहा होगा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जो कुछ अभी घटित हुआ था उसके आलोक में यीशु संभवतः ये कैसे कह सकते थे? एक गिरजा की बैठक की कल्पना करें, जहां कलेसिया कुछ कार्यों के लिए एकत्रित होती है। अध्यक्ष प्रार्थना के द्वारा बैठक की शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि उनके पास तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। सबसे पहले मुझे खेद के साथ घोषणा करना पड़ रहा है कि हमारे वरिष्ठ पादरी कुछ ही दिनों में जा रहे हैं। दूसरा, आपको ये जानना होगा कि गिरजा के खजांची ने इस्तीफा दे दिया है और इस समय पर हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि उन्होंने पैसों के साथ क्या किया है। तीसरा, हमारे अध्यक्ष ने विश्वास से इनकार कर दिया है और अब गिरजा से जुड़े रहना नहीं चाहते हैं। कलिसिया विनाशकारी समाचार की इस तहरी घोषणा से सदमे में रहते हैं, परंतु अध्यक्ष जारी रहते हैं। मुझे पता है कि आप में से कुछ के पास सवाल हो सकते हैं। वे कहते हैं, परंतु पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि अपने मन को परेशान मत होने दे। यदि यहूदा की तरह कोई आपके विश्वास को धोखा दे तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे जब कोई अगुआ, जिसका उदाहरण आप देखते हैं, ठीक पत्रस की तरह उसके खुद के पैर डगमगाए हुए हो? और आप इस बात का कैसे सामना करेंगे जब जिस व्यक्ति के इर्द गिर्द आपने अपना जीवन बसाया हुआ हो वो अब आपके साथ नहीं हो? तो इसका उत्तर यीशु के शब्दों में निहित है। यीशु ने कमरे के चारों ओर देखा। उनकी भेदी आंखें अपने शिष्यों की आत्माओं में झांक रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु उनसे विश्वास की अंधी छलांग लगाने के लिए नहीं कह रहे थे। वे कह रहे थे, मैं अभी तुमसे यह चाहता हूं कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ में विश्वास रखो। शिष्यों ने उनके चमत्कार देखे थे, उनके शब्द सुने थे और 3 साल तक उनके साथ चले थे। अब उन्हें यीशु के बारे में जो कुछ भी पता था उस पर ध्यान देना था। महान अंधकार के इस क्षण में मसीह ने उन्हें उस शिक्षा पर भरोसा करने के लिए बुलाया जो उन्होंने उन्हें प्रकाश में सिखाया था। फिर यीशु उन्हें अपने ऊपर विश्वास करने के लिए बुलाकर उनसे भविष्य के बारे में बात की। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यह दृश्य पिता के घर में एक साथ रहने वाले एक बड़े परिवार का है। यीशु द्वारा अपने पिता के घर में कई कमरों के बारे में बोलने में एक विशेष व्यंग है। जब यीशु का जन्म हुआ तो बैतलहम में उनके लिए कोई कमरा नहीं था। सराय के मालिक के पास एक छोटा सा घर था और हर कमरे पर कब्जा कर लिया गया था। पादरी कहते हैं कि वे ये सोचे बिना नहीं रह सकते कि यीशु के चेहरे पर मुस्कान रही होगी जब वे अपने दोस्तों से कह रहे थे, वास्तव में अब चिंता मत करो, जब तुम मेरे घर आओगे तो ये वैसा नहीं होगा जैसा तब था जब मैं तुम्हारे घर आया था। आपको ये बैतलहम की तरह भीड़भाड़ वाला नहीं लगेगा। मेरे पिता के घर में बहुत से कमरे हैं। यीशु ने उस शाम को फिर से घर के बारे में बात की जब उन्होंने कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। वास्तव में यीशु ने कहा, हम उनके साथ वास करेंगे। यीशु हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ तब तक रहेंगे जब तक वे फिर से वापस नहीं आ जाते और फिर हम उनके साथ वास करेंगे। परमेश्वर आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक एक दिन आप उनके साथ नहीं चले जाते। यीशु के शिष्यों के लिए उनके भविष्य का घर निश्चित है। यीशु की स्पष्ट वादिता को सुने। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि शिष्यों का भविष्य किसी भी संदेह में होता तो यीशु ने ऐसा कहा होता, परंतु स्वर्ग में उनका भविष्य सुनिश्चित था और इस कारण से उन्हें परेशान नहीं होना पड़ा। पिता के घर का वर्णन करने के बाद यीशु ने बताया कि उनके शिष्य वहां कैसे पहुंचेंगे। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। हमें यह कल्पना नहीं करनी चाहिए कि यीशु हमारे आगमन के लिए स्वर्ग को तैयार करने के लिए 2400 घंटे काम कर रहे हैं। मसीह ने एक शब्द द्वारा शून्य से ब्रह्मांड की रचना की। वो एक ही आदेश में विश्वासियों के लिए स्वर्ग तैयार कर सकते हैं। जब यीशु ने कहा कि वह एक जगह तैयार करने जा रहे हैं, तो उनका मतलब था कि उनके जाने के द्वारा ही जगह तैयार हो जाएगी। अपनी मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण के माध्यम से मसीह ने उन सभी विश्वासियों के लिए पिता के घर की महिमा में प्रवेश करने का मार्ग खोल दिया। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान ने जगह तैयार कर दी और उन सभी के लिए एक नियुक्त जगह आरक्षित कर दी है जो विश्वास करेंगे। और इसी कारण से यीशु कहते हैं, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु कह रहे थे, यदि मैं मृत्यु की पीड़ा से गुजरूं और फिर तीसरे दिन जी उठकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ूं, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें वहां लाऊंगा। यदि आपको अपने जीवन भर की बचत एक अमूल्य अंगूठी पर खर्च करनी पड़े, तो ये समझ से परे है कि पैसे देकर खरीदारी करने के बाद आप अंगूठी को वहीं पर छोड़ दें। कीमत चुकाने के बाद अंगूठी आपकी कीमती संपत्ति बन जाएगी और आप उसे घर ले आएंगे। यही कारण से यीशु ने शिष्यों से कहा कि उन्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि उन पर भरोसा करना है। उन्होंने यूदा को जाते हुए देखा था। उन्होंने सुना था कि पतरस असफल हो जाएगा और उन्हें बताया गया था कि यीशु को उनसे छीन लिया जाएगा। ऐसा लग रहा था कि उनकी दुनिया बिखर रही है, परंतु ऐसा नहीं था। यीशु उनके लिए जगह तैयार करने जा रहे थे और वे निश्चित थे कि वे उन्हें घर ले जाएंगे। स्वर्ग की गौरवशाली आशा शायद कोसों दूर लग सकती है, परंतु यह वादा हमारे दैनिक जीवन की गड़बड़ी में हमें सहारा देने के लिए दिया गया है। पादरी कहते हैं कि जब उन्होंने अपने गुसलखाना को दोबारा तैयार किया, तो नट बोल्ट और पाइप बाहर दिख रहे थे और वह नई बत्ती लगाने के लिए छत में एक छेद था। जगह कार्यात्मक थी, परंतु कुछ भी वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। जब पादरी की पत्नी ने वहां की स्थिति देखी, तो पादरी उनको याद दिलाया कि वे एक अधूरी परियोजना पर ध्यान दे रही थी और यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। पादरी ने उनसे कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। दुनिया को मुक्ति दिलाने की परमेश्वर की योजना प्रक्रिया में है, परंतु यह अभी तक पूरा नहीं हुआ और इस दुनिया में हमारा जीवन अक्सर अस्पष्ट दिखता है। परंतु यीशु कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। याद रखे कि आप एक अधूरी परियोजना को देख रहे हैं। जो अभी आप देख रहे हैं वो वैसा नहीं है जैसा होगा। जब आप आईने में देखते हैं, तो आप एक अधूरी परियोजना को देख रहे होते हैं। आपके अंदर नया जीवन पहले ही शुरू हो चुका है, परंतु आप अभी भी शरीर के खिंचाव से जूझ रहे हैं और आप अभी भी वह नहीं बन पाए जो आप होंगे। पतरस की तरह आपकी असफलताओं के साथ साथ आपकी सफलताएं भी है, परंतु यह हमेशा ऐसा नहीं होगा। मसीह आ रहे हैं और जब वो प्रकट होंगे तो आप वो सब कुछ होंगे जो परमेश्वर ने आपको बनाया है। इसलिए अपने मन को व्याकुल ना होने दे। तो आइए हम देखें कि आज हमने क्या सीखा। यीशु की वापसी एक महत्वपूर्ण और व्यवहारिक सत्य है जिसे हमें आज ईसाई जीवन जीने के लिए समझने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है जब आपको विनाशकारी समाचारों का सामना करना पड़े। आपको आश्चर्य हो सकता है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं और भविष्य में क्या होगा। परंतु यीशु आपसे कहते हैं कि अपने मन को व्याकुल ना होने दे। वे आपको उन पर विश्वास करने और जो कुछ उन्होंने अपने बारे में प्रकट किया है उस पर भरोसा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप में और दुनिया में परमेश्वर का कार्य एक अधूरी परियोजना है जो तब पूरा होगा जब यीशु मसीह महिमा के साथ लौटेंगे।